Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Ballabha Girivara Dadi Gopi Jana Ballabha Girivara Dadi Yashoda Nandana Braja Janardhanjana Yashoda Nandana Braja Janardhanjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Ballabha Girivara Dadi Jaya Gopi Jana Ballabha Girivara Dadi Yashoda Nandana Braja Janardhanjana Yashoda Nandana Braja Janardhanjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Radha Madhava Kunja Bihari Jayam Vishnupad Paramahamsa Parikraj Ikacharya Ashtotilasata Shri Shima His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Anantakoti Vaishnava Brinda Ki Grantaraj Srimad Bhagavatam Ki Jainitai Gopremanandi All glories to the assembled devotees All glories to the assembled devotees All glories to the assembled devotees All glories to Sri Guru and Sri Gauranga
Hare Krishna हरे कृष्णा आज हमारे बीच में एक वेरी सीनियर भक्त हैं ग्रेस केशव प्रभु ये प्रभु जी ऑस्ट्रेलिया से आए हैं ऑस्ट्रेलिया में इस मूवमेंट में 25 साल से हैं प्रभु जी जो है हिज होलीनेस तमल कृष्ण गोस्वामी के डिसाइपल हैं और शुरू में एडिलेड टेंपल के भी प्रेसिडेंट थे और अभी प्रभु जी उधर मेलबर्न में एक फॉर्म है उधर हरे कृष्ण वैली नंदग्राम वहाँ फॉर्म का टेक केयर करते हैं और वहाँ फॉर्म में बहुत सारे रेट्रीट्स होते हैं रेगुलर जपा रेट्रीट और वर्कशॉप्स होते हैं कुकिंग वर्कशॉप्स फुल ऑफ एक्टिविटीज बहुत काम होते हैं उधर सब प्रभु जी देखते हैं उधर और प्रभु जी का विशेष यह है कि मेलबर्न के अंदर भक्ति वैभव का कोर्स कराते हैं काफी सालों से ये कुछ शब्द कहा हमने उनके प्रभु जी के बारे में आज हम प्रभु जी को वेलकम करते हुए एक हरे कृष्ण महामंत्र जोर से बोलते हैं हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
Narayanam Namaskritya Naram Cheva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Udirayat Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Reading from Srimad Bhagavatam, Canto 9, Chapter 10, Chapter entitled The Pastimes of Lord Ramachandra, Text number 26. Hahata smavayam narta
Hadatma ayam narta
Loka ravana ravana
Loka ravana ravana
Kamya chach charanam lanka
Kamya chach charanam lanka
Twadvihina paradita
Twadvihina paradita
Hahata smavayam narta
Hahata smavayam narta
Loka ravana ravana
Loka ravana ravana
Kamya chach charanam lanka
Kamya chach charanam lanka
Twadvihina paradita
Twadvihina paradita
Hahata smavayam narta
Hahata smavayam narta
Loka ravana ravana
Loka ravana ravana
Kamya chach charanam lanka
Kamya chach charanam lanka
Twadvihina paradita
Twadvihina paradita Loka Ravana Ravana Amyaya Charam Lakta Radvina Parajita Ayatam
That's enough. Thank you.
Loka Ravana Ravana Namaya Jaram Lanka Adhina Parajita Ahatasma Vayam Nata Loka Ravana Ravana Namaya Jaram Lanka Vena Parajita Ahatasvayam Nata Loka Ravana Ravana Amyaya Charanam Lanka Adhina Parajita ఆదాత్మస్వయంనాథ ఓక రావణ రావణ అమ్మయాచరణ లంకా అగ్నిహీనాపరాజిత ఆదాత్మస్వయంనాథ రావణ రావణ
Alas.
Ha.
Hata.
Hata.
Killed. Sma.
Sma.
In the past. Vayam.
Vayam.
All of us.
Ambi.
Narata.
Narata.
O protector.
He rakshak.
Loka Ravana, O husband who created the crying of so many other people. Ravana, O Ravana, the one who can cause crying of others. Come unto whom?
Iska.
Yayat will go. Sharanam, shelter.
Sharanme.
Lanka, the state of Lanka.
Lanka ka raja.
Tvadvihina, being bereft of your good self.
Tumhare na hone par.
Para-ardita, being defeated by the enemies.
Chitron dwara parajit.
Translation and purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami, Srila Prabhupada. O my Lord, O Master, you epitomize trouble for others, and therefore you were called Ravana. But now that you have been defeated, we are also defeated. For without you the state of Lanka has been conquered by the enemy. To whom will it go for shelter? Translation responsively. O my Lord.
Hey Natha. Hey Swami. तुम अन्यों की मुसीबत की प्रतिमूर्ति थे अतएव तुम रावण कहलाते थे किंतु अब जब तुम पराजित हो चुके हो तो हम भी पराजित हैं क्योंकि तुम्हारे बिना इस लंका राज्य को शत्रु ने जीत लिया है बताओ ना अब लंका किसकी शरण में जाएगी
ओके purport Ravana's wife Mandodari and the other wives knew very well how cruel a person Ravana was. The very word Ravana means one who causes crying for others. Ravana continually caused trouble for others, but when his sinful activities culminated in giving trouble to Sita Devi, he was killed by Lord Ramachandra.
Tatparya, Ravan ki patni Mandodari tatha anya patnya bari bhanti janti thi ki Ravan kitna krur vyakti hai. रावण शब्द का अर्थ है कि जो अन्यों को रुलाता है रावण निरंतर अन्यों को मुसीबत में डालता रहा किंतु जब सीता देवी को कष्ट देते-देते उनके पाप कृत्यों की पराकाष्ठा हो गई तो वह भगवान रामचंद्र द्वारा मार डाला गया
Omagyan Timanandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurun Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vancha kalpata rubyascha kripa sindubhya evacha pititanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Srivasadi Gaura Bhakta Brinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. So Ravan literally means one who causes crying for others.
So Ravan karte hain jo dusron ko wo rulata hai.
So this is the nature of asuric or demoniac consciousness.
ये जो है असुरों का या राक्षसों का चेतना है।
Krishna describes in chapter 16 of Bhagavad Gita, the 16th chapter of Bhagavad Gita is called divine and demoniac natures.
जो भगवद गीता है भगवान 16वें अध्याय में इन असुरी देवी प्रवृत्तियों का वर्णन करते हैं।
So Krishna says, Ishwaraham Ahambogi Sidoham Balavan Sukhi. This means that the demoniac person, he thinks I am Ishwara and I am Bogi.
So Bhagavad Gita mein us adhyay mein Bhagavan kehte hain asuron ki pravritti ke bare mein ki Ishwaroham Aham Bogi Sidoham Balavan Sukhi. Yani asur sochte hain ki main bhogi hoon, main balwan hoon, is prakar sochte hain.
Now we see that everyone in the material world has this nature.
हम देखते हैं कि इस भौतिक जगत में हर व्यक्ति के पास इस प्रकार का स्वभाव है।
We see that it is said that in Satya Yuga, the first Yuga, the asuras or the demons and the godly people, the devotees, they lived on separate planets.
सत्ययुग में ऐसा कहा गया है कि जो असुरी लोग हैं और भक्तजन हैं जो देवी गुण वाले हैं वो अलग अलग लोकों में निवास करते थे।
So we see in the Bhagavatam that sometimes the asuras, they would attack Swarga.
So Bhagavatam mein dekhte hain ki asuras jo hain suron ke upar yani bhakton ke upar prahar karte hain.
So they were living on different planets.
So ye baat ye hai ki wo alag alag lokon mein niwas kar rahe the.
And then in Treta Yuga, because this pastime of Lord Ramachandra, which yuga does it take place in?
कि त्रेता युग जो है ये आपको मालूम है कि रामचंद्र का जो लीला है त्रेता युग में हुआ था
इस इन त्रेता युग
त्रेता युग में हुआ
सो इन त्रेता युग यू सी द डिवोटीज एंड द डीमंस दे लिव इन सेपरेट कंट्रीज
तो ये भक्त और जो असुर होते हैं वो अलग अलग देशों में रहते हैं एक ही लोक में बल्कि अलग अलग देशों में रहते हैं
सो व्हेन द बैटल टुक प्लेस दे हैड टू क्रॉस द ओशन
तो जब युद्ध हुआ तो उनको वो सागर को पार करना पड़ा
Then you see in Dwapara Yuga, which was just 5000 years ago, you see the devotees and the demons, they live in separate families.
तो हम देखते हैं कि द्वापर युग में ये जो भक्त और असुर है कि वो एक ही राष्ट्र में लेकिन अलग अलग परिवारों में रहते हैं एक ही परिवार में रहते हैं अलग अलग जगह
So you have the Pandavas and the Kauravas.
तो पांडव और कौरव एक ही परिवार में
They are living in separate families.
So, अलग-अलग जगह रहते थे वो.
Now we are in Kali Yuga.
अभी हम कलयुग में हैं.
Kali Yuga की? No.
कलयुग की?
No. No one likes. Actually, Kali Yuga is the best Yuga.
असलियत में कलयुग जो है सबसे अच्छा युग है.
We'll explain why that Kali Yuga is the best. But in Kali Yuga. It is said the devotee and the demon they live in the same body.
ऐसा कहा गया है कि कलयुग में ये जो भक्त है और असुर है वो दोनों एक ही शरीर में निवास करता है.
So sometimes we wake up in the morning and the devotee wakes up.
जब सुबह हम जब जागते हैं तो तब एक भक्त जागता है.
And sometimes we wake up in the morning and the demon wakes up.
जब सुबह जब हम उठते हैं कभी-कभी वो असुर जाग रहा है.
So both are within us in Kali Yuga.
ये दोनों कलयुग में है कलयुग में दोनों प्रवृत्तियां हमारे हृदय में है.
Devotee means he wants to serve God. He wants to serve Krishna.
भक्त का अर्थ है कि भगवान की सेवा करना चाहता है.
Demon means he does not want to serve Krishna.
अब असुर का अर्थ है कि जो भगवान की सेवा नहीं करना चाहता है।
So in Kali Yuga we fight with this mentality. Sometimes we want to serve Krishna, sometimes we do not want to serve Krishna.
कलयुग में इस प्रकार का संघर्ष हमारे हृदय में चलता रहता है। कभी-कभी हम भगवान की सेवा करना चाहते हैं, कभी नहीं करना चाहते हैं।
So in the previous yugas, Satya Yuga, Treta Yuga, Dwapara Yuga, when Krishna came as Nrisimhadev in Satya Yuga, as Ramachandra in Dwapara Yuga, sorry, Treta Yuga, as Krishna in Dwapara Yuga, then they killed the demons.
तो नरसिंहदेव के सतयुग में, भगवान रामचंद्र त्रेता युग में और स्वयं कृष्ण द्वापर युग में आके उन्होंने क्या किया? असुरों को वध किया।
So in the different yugas, the Lord would kill the demons.
अलग युगों में, अन्य युगों में भगवान जो है असुरों को वध करते हैं।
जय राधा गिरिधारी की,
जय
जगन्नाथ बलराम सुभद्रा की,
जय
गोनिताय की,
जय।
But in Kali Yuga, if the Lord was going to kill all the demons, that means every one of us.
अगर कलयुग में भगवान अगर ऐसा संकल्प लें कि सब असुरों को वध करने की, तब को हम सबको मारना पड़ेगा।
Because every one of us has demon inside of us.
क्योंकि हर व्यक्ति के हृदय में असुरित प्रवृत्ति है।
So in this age, the Lord has appeared as Sri Chaitanya Mahaprabhu.
इसलिए इस युग में चैतन्य महाप्रभु रूप में भगवान प्रकट हुए।
Who is Kali Yuga Pavana?
जो कलयुग के पावन है।
He has come to destroy the demoniac propensity within the heart of every person.
तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु सबके हृदय में जो असुरी प्रवृत्ति है उसको नाश करने के लिए आए।
चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु, they will not kill anyone in this age.
तो नित्यानंद प्रभु, चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु वो किसी को इस कलयुग में वध नहीं करते।
But they will kill the demon within us.
लेकिन हमारे अंदर जो असुर है वो असुरी प्रवृत्ति है उसको नाश करते हैं।
By the process of chanting the Hare Krishna Maha Mantra.
ये हरिनाम संकीर्तन के विधि के द्वारा।
So they have come and they are destroying within our consciousness the demoniac propensity.
तो आए हैं और आके हमारे हृदय में जो असुरी प्रवृत्ति है उसको नाश कर रहे हैं।
So we should feel as devotees, as time passes, year after year, decade after decade, we should feel the demoniac quality within our heart becoming less.
जैसे हम साधना भक्ति करते हुए और साल साल बीतता जाता है, हमको यह अनुभव करना चाहिए कि हमारे हृदय में जो असुरी प्रवृत्ति है वो कम होता जा रहा है।
And we should feel the devotional quality becoming more.
हमारे हृदय में जो भक्ति की जो भावना है वो बढ़ रहा है, ये अनुभव करना चाहिए।
So Srila Prabhupada says in Krishna book around about chapter 30, Srila Prabhupada says this is the test of the devotee. Is the devotional kripa or the devotional merit or the devotional nature becoming more and is the demoniac nature becoming less?
Krishna book mein, Krishna Purushottam Bhagavan Shri Krishna book mein, Prabhupada ji likhte hain teesva adhyay mein ki ये परीक्षा है भक्त की, क्या मेरी असुरी प्रवृत्ति बढ़ रहा है या देवी प्रवृत्ति बढ़ रहा है।
Then we can see, are we becoming successful in Krishna consciousness?
हम देख सकते हैं कि जब देवी प्रवृत्ति जब बढ़ रहा हो तो हम ये निश्चित रूप में कह सकते हैं कि मैं कृष्ण भक्ति में उत्तीर्ण हो रहा हूँ।
It means in time is the devotional quality becoming more.
तो यानी कालांतरगत हमारे अंदर भक्ति की जो भावना है बढ़ रही है।
At the stage of anishta, anishta means unsteady devotion. This is the stage of anartha nivritti.
जो अनर्थ निवृत्ति के समय में जो अनिष्ठा होता है, यानी भक्ति के शुरुआत में कभी ऊपर नीचे होता रहता है।
This is the stage that all of us are in at this point in time.
अभी हम वर्तमान में हम सब इस स्तर में हैं।
All of us are situated in anartha nivritti.
हम सब अनर्थ निवृत्ति के स्तर में हैं।
Nivritti means to remove.
निवृत्ति का अर्थ है उखाड़ के फेंक देना।
Artha means something valuable.
अर्थ का अर्थ है कि कोई सबसे महत्वपूर्ण वस्तु।
Anartha means something which is of no value.
अनर्थ का अर्थ है जिसका कोई कीमत नहीं है, कोई अर्थ नहीं है।
So at this point in time, we are removing that thing in our heart which has no value.
अभी हम क्या कर रहे हैं हमारे हृदय में जिस जो अनर्थ है उसको जो हमारे लिए कोई काम का नहीं है उसको उखाड़ के फेंक रहे हैं
That even though it has no value, we are so attached to it.
ये हमारी स्थिति ऐसी है कि जो भले ही उसका कोई काम का नहीं है हमारे लिए कोई अर्थ नहीं है उस अनर्थों के प्रति हमारा आकर्षण आ सकती है
If you look in your heart and you think about what you are most attached to in this world, it has no value.
अगर हम अपने हृदय में झांक के देखें और दिखाई पड़ता है कि जो चीज के प्रति हम अत्यंत आसक्त हैं वो उसका कोई मतलब नहीं है इसका कोई अर्थ नहीं है
But still we are attached to it.
लेकिन फिर भी हम उसके प्रति अत्यंत आसक्त हैं
Just like a child is holding on to a box of matches.
तो जैसे कि एक बच्चा वो एक माचिस का डब्बा को पकड़ के रखा है
So the parent is saying, give me those matches.
तो माँ जो माता पिता आके बोलते हैं तो वापस दो माचिस के डब्बा को
Because this is dangerous for you.
तो क्योंकि ये तुम्हारे लिए बहुत खतरनाक है तुम वापस दो ये माचिस का डब्बा को
But the child holds on to it and he cries and he cries and he cries and he will not give it.
तो ये बच्चा जो है उसको पकड़ के बैठा है और रो रहा है और नहीं दे रहा है उसको वापस
So Krishna is saying to all of us, give me your anarthas.
तो कृष्ण कहते हैं सबको हम सबको यही कह रहे हैं कि आप अपने अनर्थों को मुझे दे दो
Let go of these things.
जैसे इस प्रकार की चीजें हैं
I will give you something much better.
मैं आपको और अच्छा चीज दे रहा हूँ
I will give you myself.
मैं अपने आप को देने के लिए तैयार हूँ
But we are like children.
हम बच्चे जैसे हैं
We hold on to the anarthas.
लेकिन हम क्या करते हैं उस अनर्थों को पकड़ के बैठे हैं
We think this is better.
हम सोचते हैं बहुत अच्छा है हमारे ये उससे अच्छा है
So Nityananda Prabhu and Chaitanya Mahaprabhu, they have come to clear away this demoniac consciousness from our heart.
So Chaitanya Mahaprabhu and Nityananda Prabhu aaye hain is prakar ki jo asuri pravrutti hai usko saaf karne ke liye.
And they do this by the process of chanting the Hare Krishna Maha Mantra.
So ye jo hain wo apne jo sankirtan andolan ke dwara ye kaary kar rahe hain.
So actually, of all the yugas, which yuga is the best?
Sare yugon mein sabse shreshth yuga kaun sa hai?
Which one is the best?
क्या आपका प्रश्न क्या प्रश्न है कि कौन सा अच्छा बताइए
What do you think?
आपका क्या विचार है
Hands up for Satyuga.
कितने लोग बोलते सतयुग है सतयुग श्रेष्ठ है आप बताइए कोई हाथ
One. Very good. One. Okay.
वो एक दो
Hands up for Treta Yuga.
त्रेता युग बोलते हैं कौन सा अच्छा श्रेष्ठ युग त्रेता युग कौन बोलते हैं आप बताइए
Okay. Hands up for Dwapar Yuga.
द्वापर युग के लिए कौन श्रेष्ठ बोलता है
One?
One.
Okay, good. Hands up for Kali Yuga.
Kali Yuga ke liye.
Everyone likes Kali Yuga.
Sab logo Kali Yuga acha lagta hai.
Kali Yuga ki? Why do you like Kali Yuga? Kali Yuga is horrible.
Kali Yuga kyun acha lagta hai?
Kali Yuga, look outside now. We're in a temple in a mandir. If you go back to Dwapar Yuga 5,000 years ago, this temple would be a very peaceful place.
आप अगर देखोगे 5000 साल पूर्व तो ये मंदिर देखिए इतना शांत एकदम सुंदर वातावरण होता था कलयुग क्यों पसंद है आपको
But now we're in Kali Yuga. There are cars, there are buses just outside 20 meters from where we are sitting.
जैसे कि कलयुग है इसलिए बाहर कार है बस इतना सारा गंदगी आवाज है
It is not peaceful.
ये शांत नहीं है कलयुग
Kali Yuga is not good.
कलयुग अच्छा चीज नहीं है
But still it says in the Shastra Kali Yuga is best.
शास्त्र में कहा गया है कलयुग जो है श्रेष्ठ है
सो वन टाइम थ्री ऋषिज थ्री मुनीस थ्री सेजेस दे वर हैविंग एन आर्ग्यूमेंट
तो एक बार ऐसा हुआ तीन जो ऋषि हैं वो अपने आप बीच में वो तर्क करने लगे
सो वन ऋषि सेड सतयुग इज बेस्ट वन सेड त्रेता युग इज बेस्ट एंड वन सेड नो द्वापर युग इज बेस्ट
तो तीनों ऋषियों ने एक एक अपना मंतव्य दिया कि एक ऋषि ने कहा कि सत्युग श्रेष्ठ है दूसरे ने कहा द्वापर श्रेष्ठ है और तीसरे ने कहा नहीं वो त्रेता श्रेष्ठ है
सो देन दे सेड नाउ वी विल गो एंड आस्क महामुनि श्रील व्यासदेव व्हिच इज बेस्ट
उन्होंने सोचा कि अभी महामुनि व्यासदेव के पास जाएंगे और पूछेंगे कौन सा श्रेष्ठ है
सो दे वेंट टू बद्रिक आश्रम नेक्स्ट टू द गैंजेस एंड व्यासदेव वाज टेकिंग बाथ
तो बद्रिक आश्रम गए और व्यासदेव जो नहा रहे थे उस समय स्नान कर रहे थे गंगा तट पे
So Vyasadev, he went underwater and then he came up.
Vyasadev jo hai wo jal mein wo dubki maar ke bahar aaye.
And then he saw the three sages and he looked at them and he said, what do you want?
तो उन्होंने तीनों ऋषियों को पूछा कि आप इधर आगमन किया है आपने आप क्या किस उद्देश्य से आए हैं
They said tell us which yuga is the best Satya yuga Treta yuga or Dwapara yuga
तो व्यास देव से उन्होंने प्रश्न किया कि कौन सा युग श्रेष्ठ है सत्य या त्रेता या द्वापर
And then Vyasadeva said Kali yuga
तो व्यास देव ने कहा कलयुग श्रेष्ठ है
And then he went underwater
फिर वापस वो डुबकी मारे
And then he came back up.
वापस ऊपर उठे
And then he said to them, Kali Yuga is best. Why is Kali Yuga best?
तो उन्होंने कहा कलयुग जो श्रेष्ठ है मैं कारण बताऊंगा कलयुग श्रेष्ठ क्यों है
Kale Adosha Nidhe Rajan Asti Heko Mahanguna Kirtanad Eva Krishna Shya Mukta Sangha Param Brajet Bhagavatam says that this age is the best because there is one Mahaguna Kale Adosha Nidhe Rajan Niti Dosha Nidhi means it is an ocean of faults but there is one good quality Mahaguna Kirtanad Eva Krishna Shya You just do Krishna Kirtan. Mukta Sangha means you will be liberated. Param Brajet. You will go back to Goloka Dham.
So, this Kaliyuga is best because in this yuga, there are many dosas, dosas ki nidhi hai Kaliyuga. But in it, there is a mahaan gun. That is Kirtan or Krishna. That is Krishna's Kirtan, Harinam. If Harinam takes Harinam, then what happens? अनेकों अनेकों अर्थों से हम मुक्त हो जाते हैं परम व्रजित भगवान की धाम में हम जाते हैं
So this is the merciful nature of this age. Actually, Kali Yuga is the best.
तो ये कलयुग का विशेष कृपा है कलयुग जो है इससे श्रेष्ठ है क्योंकि हम आसानी से भगवत धाम जा सकते हैं
And actually, Srila Jiva Goswami, he explains why is Kali Yuga so good.
श्री जीव गोस्वामी पर कलयुग के गुणगान करते हैं बताते हैं कि कलयुग क्यों अच्छा है श्रेष्ठ है
Because he says in Kali Yuga, everyone is in so much anxiety.
So, he says in Kali Yuga, everyone is in so much anxiety.
That when you chant, you have to chant sincerely.
लेकिन जब हम जब करते हैं बहुत श्रद्धा से जब करना होगा.
To get relief from your anxiety.
हमारी ये चिंता से मुक्त होने के लिए बहुत श्रद्धा से जब करना होगा.
Kali Yuga की Jai Kali Yuga. Kali Yuga is good, actually, for the devotees. Because in this one lifetime, it will take you in Satya Yuga to become Krishna conscious, God realized, it will take you 60,000 years.
So, Satya Yuga mein aapko Krishna, Chetana ko Krishna bhavana bhavit banana hai, to aapko 60,000 saal lagenge.
In Kali Yuga, you can become fully Krishna conscious in 60 years.
तो आप कलयुग में ये 60 साल में आप कृष्ण भक्ति के सिद्धि को प्राप्त कर सकते हो
इवन इन 6 इयर्स
6 साल में भी कर सकते हो
इवन इन 6 डेज
6 दिन में भी कर सकते हो
इवन इन 6 मिनट्स
6 मिनट में भी कर सकते हो
इवन इन 6 सेकंड्स
6 सेकंड में भी कर सकते हो
इवन इन 1 सेकंड
1 सेकंड में हो सकता है
इफ यू चैंट सिंसियरली
अगर श्रद्धा से जप करेंगे तो
हाउ डू यू चैंट सिंसियरली
कैसे हम श्रद्धा से जप कर सकते हैं
Like Draupadi.
जैसे द्रौपदी ने किया.
Draupadi was holding on.
द्रौपदी अपने आप को पकड़ के रखी थी, साड़ी पकड़ के रखी थी.
So as long as we hold on to this world, we can't chant sincerely.
जब तक हम इस जगत को पकड़ के रखेंगे, तब तक हम श्रद्धा से जप नहीं कर सकते.
But when Draupadi let go,
जैसे द्रौपदी ने अपनी साड़ी को छोड़ दिया, पूर्ण शरणागत हो गई.
Then Krishna came.
तब कृष्ण आए.
And took care of her, no problem.
और द्रौपदी को देखभाल किया.
Krishna, when we chant like Draupadi, then we will go back.
जब द्रौपदी जैसे नाम उच्चारण करेंगे हम भगवान की धाम में जाएंगे.
But now we hold on very tightly to this world.
इस जगत को बहुत.
So our japa does not have full potency.
तो इसलिए हम जपा में बहुत अच्छा जप नहीं कर पाते क्योंकि इस जगत को पकड़ के रखे हैं.
But when you chant like Draupadi, when you're chanting your japa, Prabhupada says you should chant your japa like a child is crying for the mother.
प्रभुपाद जी ने कहा कि जैसे एक बच्चा माँ के लिए रोता है उस प्रकार को जप करना चाहिए
प्रभुपाद says when you chant you should be chanting to Krishna
O Lord, O energy of the Lord, please engage me in your service.
तो हम जब जप करते उस समय ये भावना कैसे जप करना चाहिए कि भगवान मुझे आपकी सेवा में नियुक्त कीजिए.
This is the mood of the devotee.
ये भक्त का भाव होता है.
So the three sages, they ask more questions to Vyasadeva.
ये तीनों ऋषियों ने व्यासदेव से और कुछ प्रश्न पूछे.
They said to Vyasadeva, which of the vanas is the best?
तो व्यासदेव ने पूछा कि कौन सा वर्ण श्रेष्ठ है.
One said brahmana is best. One said kshatriya is best. One said no. Actually, vaishya is best.
तो तब एक ने कहा कि ब्राह्मण श्रेष्ठ है, किसी ने कहा क्षत्रिय श्रेष्ठ है और किसी ने कहा कि वैश्य श्रेष्ठ है.
So Vyasadeva, he went underwater and then he came up and they said, which is best? Brahmana, Kshatriya, Vaishya. Vyasadeva said, Mataji is best. And then he went underwater again.
So Vyasadeva वापस वो नदी में डूब के फिर वापस आए. उन्होंने कहा कि तो कलयुग में माताएं श्रेष्ठ है, स्त्री जाति श्रेष्ठ है. और वापस वो नदी में डूब के.
So then he came up again and he explained to them. He said, why is Mataji best?
वापस उन ऊपर रख के उन्होंने कहा कि क्यों स्त्री जो है वो श्रेष्ठ क्यों है.
He said, because Prabhupada explains in Krishna book, women are very simple by nature.
प्रभुपाद जी जो है कृष्ण बुक में वर्णन करते हैं कि स्त्रियां होती हैं वो बहुत सरल होती है.
Men are very complicated by nature.
पुरुष होते हैं उनका मन जो है बहुत जटिल होता है.
For a man to become convinced of Krishna consciousness, you have to give him so many arguments.
एक पुरुष को कृष्ण भक्ति को स्वीकार करने के लिए आपको बहुत सारा तर्क देना पड़ता है.
You have to say this is like this and this is like that and this is, and then he goes, yeah, okay, now I'm convinced.
तो आपको ये बताना पड़ेगा ये इस प्रकार है, ये इस प्रकार नहीं है, ये ऐसा तो इस प्रकार है. तो इस प्रकार बोलने के द्वारा तब उसको समझ में आता है और वो समझ जाता है.
But Prabhupada explains in the Krishna book that the women is just very simple.
प्रभुपाद जी अपने कृष्ण बुक में वर्णन करते हैं कि स्त्रियां बहुत सरल होने के कारण स्वीकार कर लेते हैं.
They just see that Krishna is beautiful and they love him.
तो केवल देखते हैं कृष्ण बहुत सुंदर है और तुरंत उनसे प्रेम करने लग जाते हैं.
So all of us should become like that.
हमको भी उस प्रकार बनना होगा.
We are just attached to Krishna because he is beautiful.
हम कृष्ण के प्रति आसक्त इसलिए क्योंकि वो बहुत सुंदर है.
He is Shyama Sundara.
वो श्याम सुंदर है.
Shyama Sundara means beautiful boy.
श्याम सुंदर का अर्थ है बहुत सुंदर बालक.
So simply we should learn to become attached to Krishna just because he is beautiful, attracted to him.
तो हमको भी इस प्रकार कृष्ण आसक्त होना है कि ये जानते हुए कृष्ण जो है वो बहुत सुंदर है.
So everyone in Kali Yuga should become like this, just very simple and very attached to Krishna.
इस कलि युग में हर व्यक्ति को इसी प्रकार बनना होगा, बहुत सरल और कृष्ण के आसक्त होना होगा.
So then the sages, they were arguing still. So then they said to Srila Vyasadeva, which is best?
तो वापस उस ऋषि ने और एक प्रश्न पूछा, कौन सा श्रेष्ठ है?
Out of the different ashramas, which is best? One was saying brahmachari is best. One was saying vanaprastha is best. One is saying sannyas is best.
तो व्यासदेव ने पूछा, तीनों ऋषि ने अपना मंतव्य दिया. एक ने कहा कि जो ब्रह्मचारी श्रेष्ठ है, किसी ने कहा कि वानप्रस्थ श्रेष्ठ है, किसी ने कहा सन्यास श्रेष्ठ है.
So then Vyasadeva, he went underwater, he came back up, he said grihastha is best.
वापस वो नीचे गए और वापस ऊपर आए, पानी के अंदर से बाहर जैसे आए, उसने कहा कि गृहस्थ श्रेष्ठ है.
Because actually in Kali Yuga, not just Kali Yuga but in Vedic culture, all of the ashrams are dependent upon the grihastha ashram.
आजकल के कलयुग में और अन्य युगों में भी बाकी जो तीन आश्रम हैं वो सन्यास, वानप्रस्थ और ब्रह्मचारी गृहस्थ आश्रम के ऊपर निर्भर करते हैं.
So you see that the brahmachari, the vanaprastha, the sannyasi, they are maintained by the grihastha.
गृहस्थों के द्वारा पालन किए जाते हैं तीन आश्रम के लोग.
So they will come and beg every day to the grihastha, please maintain us.
तो रोज आके भिक्षा मांगते हैं कि गृहस्थों से कि आप हमको देखभाल कीजिए.
So the grihastha is considered by Vyasadev to be the maintenance of all society.
व्यासदेव के मंतव्य ये है कि गृहस्थों के द्वारा सबको पालन होता है.
Now in Kali Yuga, Bhaktivinoda Thakur says grihastha ashram is a very good position for the Vaishnavas.
तो भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं कि जो इस कलयुग में खास करके वैष्णवों के लिए गृहस्थ आश्रम जो है वो बहुत अच्छा स्थान है.
So does this mean we should not have brahmacharis or sannyasis?
इसका अर्थ क्या हमको ब्रह्मचारी सन्यासी की कोई जरूरत नहीं है?
No, we should have brahmacharis and sannyasi.
हमको सन्यासी भी होना चाहिए ब्रह्मचारी भी होना चाहिए.
But it must be genuine renunciation.
लेकिन उनके हृदय से स्वाभाविक वैराग्य होना चाहिए.
Krishna says in Bhagavad Gita, third chapter, do not be mithyachar.
Bhagavad Gita mein Bhagwan kehte hain ki mithyachari mat bano.
Do not be pretender. If you wear saffron cloth, if you're a brahmachari or sannyasi, the heart must be pure. You do not think of money and women.
So agar aap laal vast dharan kiye, geru vast dharan kiye ho, to stri aur dhan ke vishay mein vichar nahi karna chahiye.
Therefore Krishna says if you are thinking of money and women but you are wearing saffron, you are mithyachar.
Krishna कहते हैं अगर आप अगर गेरे वस्त्र पहने हो और स्त्री और पुरुष धन के बारे में विचार करते हो तो आप मिथ्याचारी हो.
So brahmachari sannyasi, that is okay, but it must be genuine.
तो हमको ब्रह्मचारी भी चाहिए सन्यासी भी चाहिए लेकिन उनको हम वो सच्चे में होना चाहिए.
So in Kali Yuga, many people, they will be in the grihastha ashram.
स्वाभाविक तरीके से कलयुग में लोग जो हैं गृहस्थ आश्रम में रहेंगे अनेकों लोग.
And actually Vyasadeva says in Kali Yuga that is good.
व्यासदेव कहते हैं इस कलयुग में इस आश्रम में रहना वो ठीक है.
And Bhaktivinoda Thakur says in Kali Yuga it is a good place for the Vaishnava.
भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं इस कलयुग में ये जो है वो अच्छा स्थान है वैष्णवों के लिए.
Because then he can gradually make advancement in Krishna consciousness.
तो तब वो कृष्ण भक्ति में वो धीरे धीरे से प्रगति कर सकता है.
It is said that brahmachari ashram is the sure way to go back to Godhead.
ऐसा कहा गया है कि जो ब्रह्मचारी आश्रम है वो निश्चित मार्ग है भगवत धाम में जाने की.
But it is said that grihastha ashram is the safe way.
तो ऐसा कहा गया है कि गृहस्थ आश्रम जो है वो सुरक्षित मार्ग है.
Because grihastha ashram protects you from falling down.
क्योंकि गृहस्थ आश्रम जो है पतन होने से सुरक्षा प्रदान करता है.
So either way in Kali Yuga, we should take shelter of Chaitanya Mahaprabhu and Nityananda Prabhu. We should chant the Hare Krishna mantra very sincerely. We should, whichever ashram we are in, we should just devote ourselves to Krishna, and our hearts should be very simple.
तो सरल हृदय के साथ हमको कोई भी आश्रम में स्थित हो उससे हमको मतलब नहीं है. चैतन्य महाप्रभु के अनुसार हमको हरे कृष्ण जप करना है और सरल हृदय बना के रखना है.
Kali Yuga ki. So we'll stop here and we'll ask if there are any questions or comments on what we have.
जरा समाप्त करेंगे. आपके पास कोई प्रश्न है या कोई कमेंट्स है तो पूछिए. कोई प्रश्न है तो पूछिए. कमेंट हाँ इनका प्रश्न ये है कि प्रश्न है कि आर्गुमेंट है प्रश्न है ये है कि गृहस्थ आश्रम पतन होने से व्यक्ति को कैसे रोक सकता है. मान लीजिए कोई ब्रह्मचारी हैं अगर उनको विवाह करना है तो मौका है. लेकिन अगर गृहस्थ है तो वो पतन होने से कैसे रक्षा किया, और साथ साथ में बहुत सारे भौतिक झंझट होते हैं तो उसमें पतन होना उसमें स्वाभाविक लगता है.
So one time, Srila Prabhupada was walking in Juhu on the beach with Giriraj Swami.
एक बार श्रील प्रभुपाद जी गिरिराज स्वामी के साथ वो जू बीच में चल रहे थे.
So Prabhupada and Giriraj Maharaj were speaking, and then Giriraj Maharaj, he said to Prabhupada, "I'm sorry, Prabhupada." He was speaking about some management, and he said, "I'm sorry, Prabhupada, I fell into Maya."
तो कुछ ऐसी चर्चा चल रही थी, कुछ मैनेजमेंट भी कुछ ऐसी चर्चा चल रही थी प्रभुपाद जी गिरिराज महाराज के साथ. तो गिरिराज महाराज ने प्रभुपाद जी कहा, सॉरी प्रभुपाद, प्रभुपाद जी मुझे माफ कीजिए, मैं माया में गिर पड़ा हूं.
प्रभुपाद स्टॉप वॉकिंग एंड ही पुट हिज केन इनटू द सैंड. ही सेड, यू आर ऑलवेज इन माया.
तब प्रभुपाद जी ने एकदम रुके और अपना जो डंडे वो पूरा रेती में घुसा के बोला कि तुम हमेशा माया में रहते हो.
Then Prabhupada walked.
और प्रभुपाद जी आगे चलने लगे.
Giriraj Maharaj was so shocked. He just stood there and then he offered his obeisances to Prabhupada and then he started walking after Prabhupada.
तो तुरंत गिरिराज महाराज प्रभुपाद को प्रणाम किया और आगे उनके प्रभुपाद के पीछे चलने लगे.
So the fact is that everyone in this world is in Maya. We are all in Maya.
तो ये बात सत्य है कि सब लोग माया में ही हैं.
All of us think we are the body.
क्योंकि हम ये विचार करते हैं कि मैं शरीर हूँ.
The brahmachari is thinking I am the body. The woman is thinking they are the body. The devotee is thinking they are the body. Everyone is like that.
तो हर व्यक्ति यही सोच रहा है कि मैं शरीर हूँ.
That is Maya.
ये माया है.
So all of us are in Maya.
एक तरीके से बताया जाए तो हर व्यक्ति माया में है.
But the grihastha ashram means okay, I am attached to the opposite sex.
गृहस्थ आश्रम का अर्थ है कि मुझे कुछ आसक्ति है.
So then, Rishabhdev says in the Bhagavatam, 5th canto, Pumsastriya Maituni Bhava Metam Hridaya Grantim, means that everyone in this world, not everyone, but many people in this world, are attracted between the opposite sex. Pumsastriya.
So, ye akarshan jo hai, bhautik chizon ke prati, ye bhautik jagat ka lakshan hai. Ye prishabhdev kehte hai.
So grihastha ashram means we're already in a fallen position. We're already attached to this material world.
Grihastha ashram ka arth hai ki ye pehle se hi wo nimna star mein hai aur kyunki hriday mein aasakti hai.
So instead of being in the brahmachari ashram or sannyas ashram, and then sometimes one may fall down because in the mind he becomes attached to the opposite sex or to money, and then he leaves that ashram. Grihastha ashram is safe because he has the association. It keeps his mind peaceful, and then he can progress in Krishna consciousness.
ये गृहस्थ आश्रम जो है वो पहले से ही निम्न स्तर में होने के नाते गिरने का संभावना ही नहीं है. ब्रह्मचारी और सन्यासी होते हैं तो श्रेष्ठ स्तर में होने के नाते वो गिरने की संभावना होता है.
Is that okay? It's okay.
Bravare.
Okay. Any other question or comment? Best way to.
Best way. What is the best way to progress in spiritual life? सबसे श्रेष्ठ मार्ग क्या है आध्यात्मिक प्रगति के लिए?
Harinam, 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 Eva Kevalam, Kalo Nascheva, Nascheva, Nascheva Gatiya Anyata.
Harinam, Harinam, Harinam Jap Karo.
Huh? It means that Vyasadeva has already said Grihastha is best. Vyasadeva said. Doesn't matter what I say. Vyasadeva has said. What's that? Okay, so therefore it says in Bhagavatam, at the end of Bhagavatam, final canto, Kale dosha niti rajan. Kali Yuga is big problem. Right? Dosha niti, just big problem. Right? So then, asti heko mahanguna. So Mahaprabhu has already said, it doesn't matter, you are in Grihastha ashram or Vanaprastha ashram or Sannyasa or just chant the holy name of Krishna.
तो ये कलयुग में एक विशेष सुविधा ये है कि आप कौन से आश्रम में हो उससे कोई मतलब नहीं है हरि नाम जप करो ये जो समस्याएं अलग अलग आश्रमों की अलग अलग प्रकार की समस्याएं होती है उस समस्याओं को कैसे समाधान करें
हाउ टू वर्क आउट योर प्रॉब्लम हाउ टू वर्क आउट योर प्रॉब्लम व्हाट इज योर प्रॉब्लम
इज क्वेश्चन हाउ टू ओवरकम दोस प्रॉब्लम्स इन ईच आश्रम Yeah.
In different ashrams?
Yeah.
Chant Hare Krishna.
Chant Hare Krishna. Hare Krishna.
It means if you're... No, the point is, Prabhupada says you must chant 16 rounds attentively. So many devotees are chanting their japa while driving the car. Right? Or putting washing in washing machine. Right? Or reading newspaper. Hare Krishna, Hare Krishna. This is not attentive chanting.
कुछ लोग भक्त बहुत सारे भक्त लोग कोई वॉशिंग मशीन में कपड़ा डालते हुए ड्राइविंग करते हुए जब करते हैं ये जब करने का वास्तविक तरीका नहीं है
इफ यू वांट टू गेट बेनिफिट फ्रॉम योर चैंटिंग यू मस्ट चैंट अटेंटिवली
अगर आपको पूर्ण फायदा प्राप्त करना है जब करने से तो आपको बहुत सावधानी से जब करना होगा
दैट विल सॉल्व योर प्रॉब्लम्स
ये सारे समस्याओं का समाधान है
Some other question or comment? I think someone else there or something.
This question is that this world is so full of problems, so much of problems, troubles are all there. The materialistic people, they don't know this. But the devotees know. But in spite of knowing, why we do the same mistake again?
Have you read Bhagavad Gita?
आपने भगवद गीता पढ़ा है?
Third chapter of Bhagavad Gita, Arjuna asks same question to Krishna.
तीसरे अध्याय में अर्जुन कृष्ण से यही प्रश्न पूछते हैं।
Krishna says, "Kama esha, krodha esha, rajaguno samudbhava."
तो इस प्रश्न का जवाब देते हुए जानते हुए भी गलती क्यों करता है उस प्रश्न का जवाब देते हुए?
Kam means lust in the heart.
भगवान कहते हैं हमारे हृदय में जो काम है, जो हुई है हमारे इसका कारण।
Even you don't want to do something, you know you should not do something, but still you do it.
भले ही हमको कोई कार्य करने गलत कार्य करने का कोई इच्छा नहीं है, हमको मालूम है कि ये नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी कर देते हैं। क्यों इसके पीछे कारण क्या है काम?
Therefore, Chaitanya Mahaprabhu says, "Cheto darpana marjanam." When you chant, your heart will become gradually purified.
तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जब हम जब करेंगे हमारा हृदय जो है वो परिशुद्ध होता है
प्लीज चैंट
कृपया करके जप कीजिए प्रश्न ये है कि प्रभुपाद कोटेशन देते हैं कि हमको मुझे मालूम है ये आग है अगर मैं उसके अंदर हाथ डालूंगा तो हाथ जलेगा लेकिन फिर भी मैं हाथ डालता हूं क्यों
yeah.
जानबूझ के कर रहा हूं
सो देन कृष्ण सेज इन भागवत गीता यू आर मूठा
तब कृष्ण कहते थे इसलिए मूर्ख है इसलिए कर
मींस नथिंग इन देयर वन टाइम प्रभुपाद इज वॉकिंग इनटू कृष्ण बलराम मंदिर With Dhananjay Prabhu, Dhananjay Prabhu is Prabhupada's disciple. He was temple president of Krishna Balaram Mandir. So Prabhupada walking in, and there was one bell above the temple, and the rope for ringing the bell. Someone pulled the rope to ring the bell when Prabhupada was walking, and the rope broke and fell on the ground. So Prabhupada actually said to Dhananjay Prabhu, don't put the rope there because it will break. But he did it anyway.
तो एक बार प्रभुपाद जी कृष्ण बलराम मंदिर में प्रवेश कर रहे थे धनंजय प्रभु के साथ में, जब एक भक्त जो है वो घंटी बजाने के लिए रस्सी को खींचा था, तब रस्सी टूट के नीचे गिर पड़ा। तो प्रभुपाद जी ने धनंजय मंदिर पहले बोले थे कि रस्सी इस प्रकार मत करो, लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसे ही लगाया था, इससे टूट गया वो।
So then Dhananjay Prabhu put the rope there and Prabhupada was walking. Someone pulled the rope and the rope broke. So then Prabhupada looked at him and he said, you know why this happened? He says, because in there is nothing. In here, there is only cow stool. In here, only cow stool.
So Prabhupada ji, Dhananjay Prabhu bole ki, tum malum hai kyun hua? Kyunki tumhare dimag mein khali kuch nahi hai. है तो भी वो गोबर भरा हुआ है।
So this is our position in material world, mudha, cow stool brain.
ये हमारी ये स्थिति है बहुत ही जगत में, गोबर भरा हुआ है दिमाग में। So his question is, you are told the Grihastha Ashram is better, but we see in Bhagavatam that big kings and all having lot of kingdom and they were in family life, ultimately they gave up.
Yeah, okay. But when did they give it up? They give it up after going through Grihastha Ashram. This is Vedic system. Brahmachari, Grihastha, Vanaprastha, Sannyasi. There is a system. So if you try to jump ahead, if you do not have Adhikar, you will fall down. If Adhikar is there, Prabhupada says, you can go straight from Brahmachari to Sannyas. Prabhupada says, if Adhikar is there. If Adhikar is not there, then you have to go gradually. Then you will go back.
So ye prashn ye hai, jawab ye hai. कि वो सब राजाओं ने त्याग किया, कब त्याग किया, सब अनुभव करके त्याग किया। तो वैसे ही जो वैदिक सिस्टम के अनुसार ब्रह्मचारी वानप्रस्थ वानप्रस्थ में सन्यास, तो अगर किसी का अधिकार है तो वो ब्रह्मचारी से सीधा सन्यासी बन सकता है, लेकिन जिसका अधिकार नहीं है वो नहीं कर सकता।
So how to choose which ashram you should be in? How do I?
इनका प्रश्न ये है कि हर एक भक्त जो है अपने आप को बहुत पतित मानता है, मेरा कोई अधिकार नहीं है करके मानता है, तो कैसे वो निश्चित कर पाएगा कि मेरा अधिकार है सन्यासी बनने का, मेरा अधिकार है ब्रह्मचारी बनने का, या मेरा अधिकार नहीं है गृहस्थ सन्यासी या ब्रह्मचारी बनने का, इसलिए मैं गृहस्थ बनूं। ये निर्णय जो है वो कैसे लिया अगर अपने आप को पतित मानेगा तो।
So in spiritual life, we always take guidance or counseling.
आध्यात्मिक जीवन में हमें हमेशा किसी के पदचिन्हों में या किसी के मार्गदर्शन में चलते हैं।
In spiritual life, we never make a decision by ourselves.
आध्यात्मिक जीवन में अपने आप मनमानी निर्णय नहीं लेते।
My Guru Maharaj, Tomal Krishna Goswami, he once said, "I don't trust any one person's mind, including my own."
तो मेरे गुरु महाराज श्री तमल कृष्ण महाराज ने कहा कि मैं एक व्यक्ति का मन के ऊपर कभी भी मैं भरोसा नहीं करता हूं, इतना हद तक कि मैं अपने मन के ऊपर भी भरोसा नहीं करता हूं.
So whenever we make decision, first we have to consult with our senior Vaishnava, guru, senior Vaishnava, then we make our decision.
तो जब हम कोई भी निर्णय लेते हैं, हम अन्य वैष्णवों से समाधान करते हुए और जो सीनियर वैष्णव हैं उनसे बात करके गुरु के साथ बैठ के बात करके निर्णय लेना चाहिए.
So then problem is solved, easy.
तब समस्याओं का समाधान है.
Any other question, comment?
इनका प्रश्न है, इस क्वेश्चन है, जब somebody ब्रह्मचारी for 5 years, 10 years, he stays in ashram and gets married.
Do you have to say Hindi?
Or? Yeah. अगर कोई ब्रह्मचारी 5-10 साल मंदिर में ब्रह्मचारी रूप में रहता है, बाद में विवाह करता है, उसमें सही है गलत है?
So it means that in the Vedic system, one gets married at 25. That is ideal. If for some reason one stay brahmachari for longer, then he can still get married, no problem, like that. But more ideal that people get married when they're a little younger. Getting married when you're older is a little problematic. But in Kali Yuga, it is said, Kale dosha niti. Kali Yuga is so many problems. So even sometimes we see brahmachari is, I know in Australia, sometimes I see brahmachari, 40 years old, 50 years old, then get married. So Kali Yuga is like this. Kali Yuga, there is no rule. Because Kali Yuga is dosha niti. Always some crazy thing happens. That's okay, Kali Yuga is there. So in Kali Yuga, you just do what you have to do, but chant Hare Krishna.
तो इसमें कोई दोष नहीं है, लेकिन वैदिक सभ्यता के अनुसार 25 साल की उम्र में उनको विवाह करना चाहिए. लेकिन हम देखते हैं कलयुग में कोई 40 साल 50 साल में करता है, ये दोष है. कलयुग का दोष की वजह से ऐसा होता है. इसके चाहे कुछ भी हो, हमको तो कहीं भी रहे, कुछ भी करे, नाम जप जरूर करना चाहिए.
But better the brahmachari, people get married when they are 25, like that. That is better. But Kali Yuga doesn't always happen. But that is better.
लेकिन कम उम्र में विवाह कर लेना वो अच्छा है, वो श्रेष्ठ है.
Anything else? What is actual time to get married? I can't hear. So I don't know. Grihastha what? Vyasadeva said. I did not say. If you have problem, you speak to Srila Vyasadeva. Go to Bhadrik Ashram.
He is saying it is a better place to have troubles.
That's all.
Ah.
Okay.
Hare Krishna.
Finish.
Antra Srimad Bhagavatam.
Yeah, Srimad Bhagavatam ki.
Yeah.
Kali Yuga ki.
Yeah.
Brahmachari Ashram ki.
Yeah.
Grihastha Ashram ki.
Yeah.
Sannyas Ashram ki.
Yeah. Harinam.
Harinam Sankirtan ki.
Yeah.
Jai Srila Prabhupada ki.
Jai.
Ah.